एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी खोज की बात करने वाले हैं जिसने सचमुच इतिहास और धर्म की हमारी समझ को, कह सकते हैं, हिलाकर रख दिया।
हाँ जी, नमस्कार। एक ऐसी खोज जो हुई तो करीब 70-75 साल पहले, लेकिन जिसकी गूंज वो आज तक सुनाई देती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मृत सागर मतलब डेड सी के गुफाओं से मिली उन प्राचीन लिखावटों की, डेड सी स्क्रोल्स जिन्हें कहते हैं।
और इस गहरे पेचीदा विषय को समझने के लिए हम टिमोथी लिम की एक किताब का सहारा लेंगे। नाम है द डेड सी स्क्रोल्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। छोटी सी किताब है पर कमाल की है।
हाँ, बहुत अच्छे से समझाती है। और सोचिए आज भी क्यों इतनी जरूरी है, मतलब क्या लेना देना हमारा इनसे?
अरे बहुत कुछ, क्योंकि ये हमें यहूदी और ईसाई धर्म की बिल्कुल शुरुआती जड़ों तक ले जाती हैं, और ये भी सिखाती हैं कि पुरानी बातों का, पुरानी किताबों का मतलब कैसे निकालें।
सही का, कैसे इतिहास के बारे में जो सुनी सुनाई बातें होती हैं और जो असली सबूत होते हैं उनमें फर्क कैसे करें।
बिल्कुल, तो चलिए आज इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं, देखते हैं कि ये पुराने कागज के टुकड़े हमें अपने अतीत के बारे में क्या नई कहानियां सुनाते हैं। सबसे पहले जरा लेखक के बारे में बात कर लें, टिमोथी लिम।
हाँ, जरूरी है।
ये एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और इनका खास विषय क्या है? हिब्रू बाइबल और वो जमाना जब ये स्क्रोल लिखे गए थे, यानी ईसा से करीब 200 साल पहले से 100 साल बाद तक का, सेकंड टेंपल पीरियड जिसे कहते हैं।
और कोई ऐसे वैसे प्रोफेसर नहीं है, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है?
क्या?
वो पुरानी भाषाएं जानते हैं जिनमें ये स्क्रोल लिखे गए, हिब्रू, अरामी, ग्रीक, मतलब वो सीधे पढ़ सकते हैं ना, किसी अनुवाद के भरोसे नहीं।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, इससे उनकी बात में वजन आ जाता है।
बिल्कुल, वो सीधे सोर्स से बात कर रहे हैं।
हाँ, और उनकी एक और खास बात है, उनका नजरिया बहुत संतुलित है, मतलब वो ना तो किसी धर्म की तरफदारी करते दिखते हैं, ना ही उन खोजों को लेके कोई सनसनी फैलाने की कोशिश।
अच्छा।
एक सच्चे इतिहासकार की तरह उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि भाई सबूत क्या कहते हैं, और वो खुद इस फील्ड में काम करते रहें तो बातें हवा हवाई नहीं है, ठोस अनुभव है।
चलिए बढ़िया, मतलब हमें एक भरोसेमंद गाइड मिल गया है इस सफर के लिए। अब आते हैं किताब पर। जैसा नाम है, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो ये इन डेड सी स्क्रॉल्स का एक छोटा लेकिन बहुत गहरा परिचय है।
हाँ, मतलब आसानी से समझ आने वाला।
इसका मकसद क्या है? देखिए, इन स्क्रॉल्स के आसपास ना बहुत रहस्य, बहुत रोमांच की बातें जुड़ी हुई हैं, तो किताब का मकसद है उस पर्दे को हटाना।
बिल्कुल, अक्सर सुनने में आता है ना कि इनमें ईसा मसीह के बारे में कोई गुप्त राज है, या वेटिकन ने कुछ छुपा लिया है, ऐसी सब बातें।
हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज।
ये किताब इन सब अटकलों से परे जाती है और सबूतों के आधार पर असली कहानी बताती है।
और लिम का सबसे बड़ा तर्क क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं?
वो कहते हैं कि देखो, इन स्क्रोल्स का असली खजाना किसी छिपे हुए रहस्य में नहीं है।
अच्छा, तो फिर किस में है?
उनकी असली कीमत इस बात में है कि वे हमें उस जमाने के यहूदी धर्म की एक सच्ची और अनोखी तस्वीर दिखाती हैं, वो दौर जिसे सेकंड टेंपल पीरियड कहते हैं, यरूशलेम मंदिर के नष्ट होने से पहले का समय।
हाँ, उस वक्त का यहूदी धर्म
वो आज जैसा एक जैसा नहीं था, उसमें बहुत सारे अलग अलग विचार थे, अलग अलग समूह थे, बहुत विविधता थी।
अच्छा, मतलब एक तरह की खिड़की है ये उस जमाने में झांकने की।
बिल्कुल सही, तो ये किताब हमें एक तरह से यात्रा पर ले जाती है। शुरू होती है 1947 में उन गुफाओं में स्क्रॉल मिलने की रोमांचक कहानी से।
हाँ, वो चरवाहे वाली।
फिर बताती है कि इन कागजों में लिखा क्या है, फिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें लिखा या इकट्ठा किया, और फिर इनका बाइबल और ईसाई धर्म की समझ पर क्या असर पड़ा,
और इनसे जुड़े विवादों की भी बात है।
हाँ हाँ, वो भी, मतलब पूरी कोशिश है कि रहस्य की जगह ज्ञान दिया जाए।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब का पहला हिस्सा है खोज और सबके सामने आने की कहानी, वो मशहूर कहानी। 1947 में एक बेदुइन चरवाहा लड़का मोहम्मद एद धिब।
हाँ, अपनी खोई हुई बकरी ढूंढ रहा था, है ना?
हाँ, और उसे एक गुफा मिली, और अंदर मिट्टी के पुराने मटके, और उनमें रखे थे ये चर्मपत्र।
क्या कमाल का इत्तेफाक था, किस्मत ही कहेंगे।
लेकिन इसके बाद की कहानी थोड़ी उलझी हुई है। ये स्क्रॉल्स धीरे धीरे पुरानी चीजें बेचने वालों के पास पहुंचे, फिर विद्वानों तक।
और उस वक्त माहौल भी तो बड़ा गर्म था, इजराइल बनने वाला था, ब्रिटिश मैंडेट खत्म हो रहा था, काफी उथल पुथल थी।
हाँ, उस सब में भी मामले को पेचीदा बनाया। और फिर वो विवाद कि भाई इन सभी स्क्रोल को छापने में पब्लिश करने में इतनी देर क्यों लगी, कई दशक लग गए।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि चर्च कुछ छुपाना चाहता है, साजिश है।
लेकिन लिम समझाते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं था, साजिश वाजिश नहीं थी।
नहीं, लिम कहते हैं कि असल में कई कारण थे। एक तो काम बहुत बड़ा था, सोचिए हजारों टुकड़े थे, पहेली जोड़ने जैसा।
हाँ वो तो है।
फिर जो शुरुआती टीम थी ना विद्वानों की, उनका रवैया भी थोड़ा बंद किस्म का था। वो जानकारी आसानी से बांटते नहीं थे और राजनीतिक हालात भी थे, तो ये सब मिला जुलाकर देरी हुई।
मतलब इंसानी और व्यावहारिक मुश्किलें ज्यादा थीं।
बिल्कुल, ये बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ पुरानी घटनाओं का नाम नहीं, उसे खोजना और समझना भी अपने आप में एक कहानी है। अच्छा, तो अब सवाल ये कि इन स्क्रोल में मिला क्या?
हाँ, ये अगला बड़ा सवाल है। किताब का एक अहम हिस्सा इसी पर है, स्क्रोल और उनमें लिखी बातें।
और मिला भी तो कितना कुछ, 11 गुफाओं से करीब 900 अलग अलग किताबों या दस्तावेजों के। पता है कितने टुकड़े?
कितने?
25,000 से ज्यादा।
25,000?
बाप रे,
जरा सोचिए कितना बड़ा खजाना। इनको समझना तो बहुत मुश्किल रहा होगा।
हाँ, तो विद्वानों ने इन्हें समझने के लिए मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा है।
अच्छा, कौन कौन से?
पहला हिस्सा है बाइबल की किताबें। करीब 1/4 स्क्रॉल इसी में आते हैं। इनमें हिब्रू बाइबल की लगभग हर किताब के हिस्से मिले हैं, सिर्फ एस्तर की किताब नहीं मिली।
और सबसे हैरत की बात?
सबसे हैरत की बात ये कि ये उस जमाने की सबसे पुरानी बाइबल की कॉपी से भी करीब 1,000 साल ज्यादा पुरानी है।
1,000 साल? जैसे वो मशहूर ग्रेट यशाया स्क्रोल है ना, वो यशाया नबी की पूरी किताब की बहुत पुरानी कॉपी है।
बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है खास उस समुदाय के दस्तावेज जो शायद कुमरान में रहता था। इन्हें सांप्रदायिक दस्तावेज कहते हैं।
अच्छा, उनमें क्या है?
उनमें उनके अपने नियम कानून है, जैसे कम्युनिटी रूल। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, जैसे दमिश्क दस्तावेज। और भविष्य के बारे में उनकी सोच, जैसे वॉर स्क्रोल, जिसमें अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई का जिक्र है। इनसे पता चलता है कि ये लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, पवित्रता वगैरह पर जोर देते थे शायद।
हाँ बिल्कुल, कर्मकांडीय शुद्धता, मसीहा के आने का इंतजार, ऐसी बातें।
और तीसरा हिस्सा है दूसरे यहूदी ग्रंथ।
ये कौन से ग्रंथ हैं?
ये वो धार्मिक किताबें हैं जो उस जमाने में पढ़ी जाती थीं, लेकिन बाद में उन्हें यहूदी या ईसाई धर्म की मुख्य किताबों यानी कैनन में शामिल नहीं किया गया।
अच्छा, मतलब उस समय ये भी महत्वपूर्ण थी।
हाँ, और इनमें से कई तो इन स्क्रोल के मिलने से पहले गुमनाम थीं, जैसे टोबिट की किताब या हनूक की किताब के हिस्से। ये दिखाता है कि उस वक्त यहूदी सोच कितनी विविध थी, एक धारा नहीं थी।
सवाल है, अब सवाल उठता है कि ये लोग थे कौन जिन्होंने ये सब लिखा और संभाल कर रखा? किताब का एक हिस्सा इसी कुमरान समुदाय पर है, तो सबसे मशहूर थ्योरी क्या है इनके बारे में?
सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि ये लोग एसेनीज कहलाने वाले एक यहूदी धार्मिक गुट के सदस्य थे।
एसेनी? हाँ, सुना इनके बारे में। इसके पक्ष में सबूत क्या हैं?
कई तरह के सबूत हैं। एक तो कुमरान में जो खंडहर मिले हैं ना, उनकी खुदाई से पता चलता है कि वहाँ एक पूरा समुदाय रहता था। बड़े हॉल, लिखने के कमरे और बहुत सारे नहाने के कुंड, मिकवाउत कहते हैं उन्हें।
हाँ, जो शायद धार्मिक शुद्धि के लिए इस्तेमाल होते थे।
बिल्कुल। दूसरा सबूत इन्हीं स्क्रॉल से मिलता है, खासकर उन सांप्रदायिक दस्तावेजों से। उनमें एक बड़े अनुशासित, दुनिया से कुछ अलग थलग रहने वाले समुदाय का जिक्र है जो पवित्रता पर बहुत जोर देता था।
और तीसरा सबूत?
तीसरा सबूत आता है पुराने इतिहासकारों के लेखों से, जैसे प्लिनी द एल्डर एक रोमन लेखक थे और जोसेफस एक यहूदी इतिहासकार। इन दोनों ने एसेनी नाम के एक ऐसे ही गुट के बारे में लिखा है जो मृत सागर के पास रहता था, अपनी संपत्ति साझा करता था और मुख्य धारा के यहूदी तौर तरीकों से कुछ अलग था।
अच्छा, तो उनकी बातें कुमरान में मिली चीजों से काफी मिलती जुलती हैं।
हाँ, काफी हद तक। हालांकि लिम ये असली इसराइल मानते थे और मानते थे कि दुनिया का अंत करीब है और वो उसके लिए तैयारी कर रहे थे।
बहुत दिलचस्प। अब आते हैं इस बात पर कि इन स्क्रोल्स ने बाइबल की समझ को कैसे बदला। ये तो वाकई में क्रांतिकारी रहा होगा।
हाँ, बहुत बड़ा असर पड़ा। जैसा हमने कहा, ये बाइबल की किताबों की 1,000 साल पुरानी कॉपियां हैं, तो पहली बार विद्वानों को मौका मिला कि वो बाद की कॉपियों से इनकी तुलना कर सकें।
और क्या पता चला?
पता है क्या, दो बड़ी मजेदार बातें पता चली। एक तरफ तो जैसे यशाया का स्क्रॉल है, उसे देखकर लगता है कि वाह, कितनी सावधानी से, कितने ध्यान से इन टेक्स्ट्स को हजारों साल तक नकल करके सुरक्षित रखा गया। कुमरान की कॉपी और हजार साल बाद की मध्ययुगीन कॉपियों में बहुत कम फर्क है।
कमाल की स्थिरता है मतलब।
बिल्कुल।
लेकिन दूसरी तरफ यर्मिया या शमूएल जैसी किताबों के मामले में कुछ और ही दिखा।
क्या दिखा?
पता चला कि उस जमाने में, मतलब ईसा से पहले की सदियों में, इन किताबों के एक से ज्यादा संस्करण यानी वर्जन चलन में थे। कुमरान में इनके अलग अलग पाठ मिले हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ थोड़े अलग।
अरे, इसका मतलब ये हुआ कि बाइबल शुरू से ही एक तयशुदा फिक्स किताब नहीं थी। सही पकड़े। इससे ये सोच बदल गई। पता चला कि कौन सी किताबें पवित्र मानी जाएंगी, जिसे कैनन कहते हैं, और उनका पक्का पाठ क्या होगा, ये तय होने में काफी वक्त लगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे हुई।
ये स्क्रोल दिखाते हैं कि बाइबल एक तरह से जीवित चीज थी जो समय के साथ विकसित हुई, जैसे कोई लेखक अपनी किताब के अलग अलग ड्राफ्ट तैयार करता है।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में होता है, स्क्रोल और शुरुआती ईसाई धर्म का क्या कनेक्शन है? क्या इनमें ईसा मसीह या जॉन द बैप्टिस्ट का जिक्र है?
ये बड़ा सवाल है, बहुत अटकलें लगती हैं इस पर।
लिम यहाँ बहुत साफ कहते हैं, नहीं, स्क्रोल में सीधे तौर पर यीशु या योहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट का कोई जिक्र नहीं।
कोई जिक्र नहीं?
नहीं। जो लोग ऐसा दावा करते हैं, लिम कहते हैं कि वो या तो गलत मतलब निकाल रहे हैं सबूतों का, या फिर किसी किनारे की थ्योरी पर यकीन करते हैं जिसे ज्यादातर विद्वान नहीं मानते।
लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है ना?
हाँ, ये लेकिन बहुत जरूरी है। इन स्क्रोल का असली महत्व ये नहीं कि इनमें यीशु का जिक्र है या नहीं, असली महत्व ये है कि ये हमें उस दुनिया की, उस माहौल की झलक दिखाते हैं जिसमें यीशु और उनके पहले अनुयायी रहते थे।
अच्छा, मतलब कॉन्टेक्स्ट?
बिल्कुल। ये उस जमाने की यहूदी विचार, उनकी भाषा, दुनिया को देखने का उनका नजरिया, इन सबको समझने में जबरदस्त मदद करते हैं। इससे हमें न्यू टेस्टमेंट यानी बाइबल के दूसरे हिस्से को, जिसमें यीशु की कहानी है, बेहतर समझने का मौका मिलता है।
कोई उदाहरण दे सकते हैं?
हाँ, जैसे स्क्रोल से पता चलता है कि कुछ यहूदी गुट उस समय एक नहीं बल्कि दो तरह के मसीहा के आने की उम्मीद करते थे, एक राजा जैसा, दूसरा पुजारी जैसा, या फिर कुमरान समुदाय के यहाँ एक धार्मिकता के शिक्षक, टीचर ऑफ राइटियसनेस का जिक्र है, जो एक सताया गया पर बहुत सम्मानित धार्मिक नेता था, या फिर रोशनी बनाम अंधेरा वाली सोच, साथ मिलकर खाना खाने की परंपरा, दुनिया के अंत का बेसब्री से इंतजार। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें शुरुआती ईसाइयों में भी दिखती हैं।
तो ये सीधा लिंक नहीं है, पर ये वो माहौल था, वो हवा थी जिसमें ईसाई धर्म पनपा।
बिल्कुल सही। ये स्क्रोल उस जमीन की तरह है जिसमें ईसाई धर्म का बीज पनपा। ये उस जमीन को समझने में मदद करते हैं।
समझ गया। आखिर में किताब विवादों और सनसनीखेज दावों पर भी बात करती है।
हाँ, जैसे वो प्रकाशन में देरी वाली बात। लिम फिर जोर देते हैं कि भाई, ये किसी वैटिकन साजिश का मामला नहीं था,
बल्कि
काम की मुश्किल, इंसानी कमजोरियां, टीम के अंदर के झगड़े, राजनीतिक हालात, इन सब का मिला जुला नतीजा था। वो बारबरा थियरिंग जैसे कुछ लेखकों के दावों को भी खारिज करते हैं, जिन्होंने कहा था कि स्क्रोल ईसाई धर्म का गुप्त कोड बताते हैं। लिम दिखाते हैं कि कैसे ये दावे सबूतों को तोड़ मरोड़ कर या नजरअंदाज करके किए गए हैं।
हमें सिखाता है कि इतिहास को समझने के लिए कितनी सावधानी और सबूतों पर टिके रहने की जरूरत होती है। अटकलों और तथ्यों में फर्क करना जरूरी है।
बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत से, इस किताब से क्या बड़ी बातें, क्या मुख्य संदेश निकल कर आते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है, प्राचीन यहूदी धर्म में जबरदस्त विविधता थी।
हाँ, ये बात तो बार बार आ रही है।
हम अक्सर सोचते हैं कि पुराने जमाने में सब लोग एक ही तरह से सोचते होंगे, खासकर धर्म के मामले में, लेकिन ये स्क्रोल दिखाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त यहूदी धर्म में कई अलग अलग समूह थे, कानून को लेकर, पवित्रता को लेकर, मसीहा को लेकर, सबके अपने अपने विचार थे, काफी बहसें चलती थीं।
और इसी माहौल से बाद में आज का यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों निकले।
सही कहा। कुछ कुछ जैसे आज हम भारत में देखते हैं, एक ही धर्म के अंदर कितने अलग अलग पंथ, कितनी अलग अलग मान्यताएं, व्याख्याएं होती हैं।
हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। दूसरी बड़ी बात क्या है?
दूसरी बड़ी बात है धर्म ग्रंथ बनने की प्रक्रिया, यानी कोई किताब पवित्र कैसे मानी जाती है, उसका पाठ कैसे पक्का होता है। स्क्रॉल ने दिखाया कि ये प्रक्रिया सीधी साफ नहीं थी। बाइबल की किताबें धीरे धीरे बनी, उनके अलग अलग संस्करण थे।
हाँ, और कौन सी किताब आधिकारिक मानी जाएगी यह तय होने में सदियां लगी। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी पवित्र मानी जाने वाली किताबें भी एक लंबे सफर से गुजरी हैं, उनका भी अपना इतिहास है।
बिल्कुल। तीसरा, दुनिया के अंत की उम्मीदें और मसीहा का इंतजार उस जमाने में बहुत आम था। मतलब लोग सोचते थे कि दुनिया बदलने वाली है, भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं।
हाँ, कुमरान वाले तो मानते ही थे कि वे आखिरी दौर में जी रहे हैं। यह माहौल सिर्फ कुमरान को बल्कि ईसा मसीह के समय और शुरुआती ईसाई धर्म को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है।
चौथा, यहूदी और ईसाई धर्म का रिश्ता। ये स्क्रॉल दिखाते हैं कि शुरुआत में ये दोनों धर्म एकदम अलग नहीं थे।
हाँ, बल्कि एक ही पेड़ की शाखाओं जैसे थे, जिनकी जड़ें उसी विविध यहूदी माहौल में थीं। उनकी शुरुआती भाषा, सोच, चिंताएं काफी मिलती जुलती थीं, भले ही बाद में रास्ते अलग हो गए।
ये पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। और पांचवा, व्याख्या का महत्व, मतलब इंटरप्रिटेशन।
अच्छा, कैसे?
स्क्रॉल दिखाते हैं कि पवित्र ग्रंथों का मतलब निकालना हमेशा से जरूरी रहा है। कुमरान समुदाय पेशर नाम का एक खास तरीका इस्तेमाल करता था। वो पुरानी भविष्यवाणियों को अपने जमाने की घटनाओं पर लागू करते थे।
अरे वाह, मतलब वो अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे थे।
हाँ, ये दिखाता है कि हर समुदाय अपने हालात के हिसाब से ग्रंथों का अर्थ निकालता है। ये आज भी सच है। एक ही ग्रंथ की कितनी अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, हम देखते ही हैं।
इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। सीधे कोट करना तो मुश्किल है, पर कुछ मुख्य विचारों को हम ऐसे कह सकते हैं। पहला क्या होगा?
पहला शायद ये डेड सी स्क्रोल्स सिर्फ पुरानी अजीब चीजें नहीं है, बल्कि ये धर्म के इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ को समझने की खिड़कियां हैं।
हाँ, मतलब ये म्यूजियम की चीजें भर नहीं, बल्कि ये समझने की कुंजी हैं कि आज के बड़े धर्म कैसे बने, उनकी जड़ों को समझने की।
बिल्कुल। दूसरा,
स्क्रॉल एक यहूदी धर्म नहीं बल्कि कई यहूदी धर्म दिखाते हैं। ये उस जमाने की सोच की विविधता पर जोर देता है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सोचते हैं सब एक जैसा था।
सही कहा। तीसरा क्या है?
तीसरा, इन स्क्रॉल्स की कीमत इस बात में नहीं कि वे ईसाई धर्म के बारे में क्या बताते हैं, बल्कि इस बात में है कि वो उस यहूदी धर्म के बारे में क्या बताते हैं जिससे ईसाई धर्म निकला।
हाँ, मतलब असली महत्व ईसा मसीह के बारे में कोई राज खोलना नहीं, बल्कि उस दुनिया को, उस यहूदी माहौल को समझना है जिसमें वो थे। कॉन्टेक्स्ट इज किंग।
बिल्कुल।
और चौथा,
सारे स्क्रॉल को छापने में जो देरी हुई वो किसी साजिश का नहीं बल्कि काम के बोझ, इंसानी सीमाओं और उलझनों का नतीजा थी।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि सुनी सुनाई बातों, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज पर यकीन करने से पहले तथ्यों को देखना, समझना जरूरी है। सुनने में ये सब पुरानी इतिहास की बातें लगती हैं, लेकिन इनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना?
हाँ हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो है आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग।
कैसे?
देखिए, जैसे लीम हर दावे को, हर सनसनीखेज थ्योरी को सबूत की कसौटी पर कसते हैं, वैसे ही हमें भी अपने आसपास फैली जानकारी को परखना सीखना चाहिए, खासकर आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। पूछना चाहिए, भाई सबूत क्या है, ये बात कौन कह रहा है, इसका कोई और मतलब भी हो सकता है।
बिल्कुल। दूसरी बात, इतिहास और परंपराओं की जटिलता को समझना। यह मानना कि महान विचार, ग्रंथ या संस्थाएं अक्सर सीधी रेखा में नहीं बनती, उनकी शुरुआत उलझी हुई, विविध और कभी कभी विवादों से भरी होती है।
सही कहा। इससे हम अपने इतिहास और परंपराओं को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं, बजाय उन्हें बस अच्छा या बुरा, सफेद या काला मान लेने के। जैसे हम भारत के इतिहास को देखते हैं, कितना जटिल और बहुस्तरीय है, सीधी कहानी नहीं है।
तीसरा, ये अलग अलग धर्मों को समझने और संवाद करने में मदद कर सकता है।
वो कैसी?
जब हम जानते हैं कि हमारे और दूसरों के विश्वासों की जड़ें कितनी गहरी, विविध और आपस में जुड़ी हुई हैं, तो शायद हम एक दूसरे को ज्यादा सम्मान और सहानुभूति से देख सकते हैं। ये जानना कि प्राचीन यहूदी धर्म में इतनी विविधता थी, हमें आज की धार्मिक बहसों को भी शायद एक अलग नजरिए से देखने में मदद करे।
हाँ, ये अच्छी बात कही। और आखिर में ये धीरज और मेहनत के महत्व को दिखाता है।
कैसे?
सोचिए, उन हजारों टुकड़ों को जोड़कर, पढ़कर, समझकर दुनिया के सामने लाने में विद्वानों को दशकों लग गए। कितनी मेहनत, कितना धीरज।
हाँ, ये याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान खासकर मुश्किल विषयों में अक्सर धीरे धीरे गहरी मेहनत से ही मिलता है। आज की इंस्टेंट वाली दुनिया में ये एक ज़रूरी सबक है। फटाफट नतीजे नहीं मिलते हमेशा। मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा में सबसे हैरान करने वाली बात ये जानना थी कि बाइबल, जिसे हम आज एक पक्की तयशुदा किताब मानते हैं, उसके पाठ में उस जमाने में इतनी विविधता थी। ये सोचना कि कुछ किताबों के एक से ज़्यादा मान्य संस्करण एक साथ मौजूद थे, ये वाकई चौंकाने वाला है। ये पाठ की पवित्रता के बारे में हमारी जो आधुनिक सोच है ना, उस पर सवाल खड़े करता है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है धार्मिक परंपराओं की ऐतिहासिक जटिलता और उनकी अंदरूनी विविधता को समझना। ये जानना कि जिसे हम आज मानक या सही मानते हैं, वो अक्सर एक लंबा, मिलेजुले और कभी कभी संघर्ष भरे इतिहास का नतीजा होता है। ये चीज हमें थोड़ा विनम्र बनाती है शायद।
हाँ बिल्कुल।
और ये देखना भी सुकून देता है कि कैसे गंभीर और धैर्य वाली विद्वत्ता जैसे लिम की है, वो झूठी कहानियों और सनसनीखेज दावों को हटाकर हमें सच्चाई के ज्यादा करीब ला सकती है। हम अतीत की एक जटिल और आकर्षक दुनिया में झांक सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।